Rajan samsmritya samsmritya samvadam imam adbhutam keshavarjunayo punyam rishyami cha muhur muhu. Hey Rajan, ये भगवत गीता का 18वां अध्याय और 76वां श्लोक है। ए राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। तात्पर्य, भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अभी तो प्रत्येक क्षण करता है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवर्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। ये संजय जी के वचन है। संजय जानते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आगे नम किम कुर्वत संजय। ये संजय बता दो क्या किया, किम कुर्वत क्या किया, किसने क्या क्या किया। माम कहा, मेरे पुत्रों ने और पांडवा पांडु के पुत्रों ने, जो दोनों एकत्रित हुए हैं कहां, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। और क्यों एकत्रित हुए हैं, युयुत्सव युद्ध की इच्छा लेके वहां वे एकत्रित हुए हैं। हे संजय, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है हस्तिनापुर में, जो कुरुक्षेत्र से काफी दूर है, लगभग 200 मील हो सकता है, काफी मतलब इतना है। तो उस प्रश्न का ये भगवद गीता भी उस प्रश्न का उत्तर हुआ। वैसे जब यह प्रश्न पूछा, पहला श्लोक गीता का पहला श्लोक क्या है, प्रश्न है, धृतराष्ट्र द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। अरे बहु इस प्रश्न का उत्तर गीता के अंतिम श्लोक में है। आज हम लोग और ही श्लोक यहां लेके बैठे हैं, वो बात अलग है। गीता के अंतिम कुछ श्लोक संजय ही बोल रहे, संजय उवाच। तो मेरे पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने क्या किया, किम कुर्वत। तो युद्ध में या युद्ध के संबंध में कोई जिज्ञासा करता है, किम कुल क्या हुआ, क्या परिणाम निकला, मतलब किसकी जीत हुई या होगी, कौन पराजित हो रहा है, युद्ध में और क्या पूछा जा सकता है, व्यापार में क्या पूछा जा सकता है, किसका दिवाला, किसका किसको छप्पर फाड़ के भगवान ने दिया धन, तो हुआ यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर नीतिर मतिर मम। ये उत्तर है, किसकी जीत हो रही है। तो संजय कह रहे जहां भी योगेश्वर कृष्ण है, जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण है, केवल कृष्ण नहीं कहा, योगेश्वर कृष्ण, और जिस पक्ष में या उन्हीं के पक्ष में अगर अर्जुन जैसे धनुर्धारी योद्धा भी है, दूसरे शब्द में जहां ये दोनों की जोड़ी है, कृष्ण है और साथ में अर्जुन है, तत्र वहां प्राप्त होगा, चार बातें प्राप्त होगी संजय बता रहे हैं। तत्र श्री, वहां वैभव होगा, वह संपत्ति होगी या आध्यात्मिक संपत्ति होगी। तत्र श्री तत्र विजयोत, वहां विजय होगा, वह भूति विशेष शक्ति का प्रदर्शन होगा, नीति वह नीति के नियमों का पालन भी होगा। तत्र श्री विजय भूति नीति मतिर मम, जहां तक मेरी मति कार्य करती है मैं कह सकता हूं। वैसे युद्ध का भी, युद्ध जारी ही है, युद्ध संपन्न नहीं हुआ और अंत में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहले ही संजय कह रहे हैं वहां जहां कृष्ण है जो योगेश्वर है और जहां अर्जुन है धनुर्धारी, वहां विजय होगी, उस पक्ष की विजय होगी जहां कृष्ण और अर्जुन साथ में हैं। विजयस्तु पांडुपुत्राणाम ईशाम पक्षे जनार्दनः, ऐसा नियम है, विजय तो उसी पक्ष का होता है। कौन से पक्ष का विजय होता है? ईशाम पक्षे जनार्दनः, जिस पक्ष में जनार्दन कृष्ण है उस पक्ष की जीत होती है। सत्यमेव जयते, आपको भी शायद आश्चर्य लगा, कैसे युद्ध तो अभी चल ही रहा है तो संजय कैसे कह सकते हैं कि जीत किसकी होगी, वैसे किसकी होगी नाम, यस नाम भी लिया ही तो है, यहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है तत्र वहां विजय होगी ही नहीं, विजय होती ही है, कोई भी आंख बंद करके कह सकता है, इसमें अर्जुन का हाथ देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और हाथ हस्तरेखा देखी और बाद में कहे हाँ अर्जुन तुम्हारी जीत होगी। उन्होंने ये देखा कि अर्जुन के साथ कौन है, कृष्ण है, तो जीत किसकी होगी, आपको पता चल रहा है। अर्जुन का भविष्य आप ही बता रहे हो और ये भविष्य केवल अर्जुन का ही नहीं है, और किसका है, सबका भला। तेरा मुंह काला लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, ट्रक के पीछे लिखते हैं, उसका भी भला, जो बुरी नजर से देखता है उसका भी, दूसरे कहते हैं काला तो कोई भला, तो सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, सभी की जीत होगी जो कृष्ण के पक्ष में रहेंगे, जो कृष्ण के पक्ष के हैं। यह इस संसार का एक मोटा नियम है। अगर इस नियम को हम समझ सकते हैं, यही धर्म है, वैसे यही धर्म है, द लॉज ऑफ द लॉर्ड, प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने दिए हुए जो नियम है, जो गीता में है, भागवत में है, इसी को कहा है धर्म। इस भगवत गीता को भी कई विद्वान कहते हैं कि इस गीता का जो पहला शब्द है, कौन सा पहला शब्द है गीता का पहला शब्द, धृतराष्ट्र उवाच छोड़ दीजिए, फिर कौन सा शब्द, धर्म। गीता का पहला शब्द है धर्म, और फिर मैं क्या पूछूंगा, गीता का आखिरी अंतिम शब्द है नीतिर मतिर मम, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। संजय ने जब कहा कि यहां तक, जहां तक मेरी मति, आपने पूछा था किसकी जीत होगी या क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा इस युद्ध का, तो मैं तो कह ही रहा हूं आपको, जहां तक मैं सोच सकता हूं, तो मतिर मामा जब कहा तो गीता का पूर्ण विराम हुआ। तो पहला शब्द है धर्म और आखिरी शब्द है मामा, तो दोनों को साथ में कहेंगे तो क्या होगा, धर्म मामा, मामा मामा मतलब मेरा, ये मेरा धर्म है। क्या मेरा धर्म है, ये जो धर्म से लेकर मम तक जो बीच में जो कुछ कहा है, ये क्या है, मेरा धर्म है। गीता भगवान का दिया हुआ धर्म है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो अगर हम जीत चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें किस पक्ष में, भारतीय जनता ऐसा ही पक्ष, तो ऐसा ही पक्ष है कृष्ण के पक्ष में, राम के पक्ष में, चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में अगर हम है तो हम लोग जीतेंगे। क्या लॉटरी जीतेंगे, क्या जीतेंगे हम, ये अब हर व्यक्ति सोच रहा होगा अभी, मतलब कृष्ण को प्राप्त करेंगे, इसी में हमारी जीत है, या जब तक हम लोग कृष्ण के पक्ष में नहीं आएंगे तब तक हमारी जीत भी नहीं होगी। तो तब तक हम लोगों को फांसी चढ़ाया जाएगा, शायद इन शब्दों में आपने कभी नहीं सुना होगा, फांसी चढ़ाने की क्या बात है, मतलब तब तक हमारी मृत्यु होती रहेगी। जब तक हम लोग मामेकम इस गीता को समझ के, इस धर्म को समझ के, भगवान के बताए हुए कर्मों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे तब तक भगवान हमने किए हुए, हम लोगों ने किए हुए पापों से हमें मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा मरण हर वक्त हमारा मरण होगा, मृत्यु होगी, मतलब ये हमें फांसी चढ़ाया जाएगा, हमें दंड, हमें दंडित किया जाएगा। तो दंड तो कई है, कई कष्ट है संसार में। ये जरूरी नहीं है वैसे सरकार की, अपना कोई नागरिक जब किसी नियम का उल्लंघन करता है, नो टैक्स पेमेंट या कई ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया तो कारागार में पहुंचाया जाता, वह कई सारी यातनाएं भोगनी पड़ती है। सरकार द्वारा संचालित कारागार में इस प्रकार के दंड, कई प्रकार के दंड। लेकिन ये संसार भी क्या है, ये संसार क्या है, संसार एक कारागार है और यहां भी हमें दंडित किया जाता है। चार प्रकार के दंड है, एक तो आपको कह ही दिया कौन सा है, मृत्यु दंड, और तीन है जन्म है, जन्म से शुरुआत और मृत्यु से अंत थोड़े ही है, मृत्यु से पुनः शुरुआत। लाइफ इज टफ, किसी ने न्यूयॉर्क में लिखा, न्यूयॉर्क एक दीवार पर किसी अमेरिकन जेंटलमैन ने अपना साक्षात्कार लिखा, बड़े 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 अक्षरों में लिखा था, लाइफ इज टफ। ये लाइफ कैसा है, वेरी टफ, बड़ा कठिन है, लाइफ इज टफ। और फिर आगे लिखा था देन यू डाई। एक तो सारा जीवन इतना सारा टफ चलता रहता है और अंत में क्या होता है, देन यू डाई, अंत में मृत्यु होती है। लेकिन वो लिखने वाला वहां रुका नहीं, उसने और एक छोटी सी पंक्ति डाल दी, उसने लिखा यू आर बोर्न अगेन एंड देन यू आर बोर्न अगेन, और फिर तुम्हारी पुनः तुम्हारा जन्म होता है, और पूरा जन्म होता है तो फिर पुनः क्या होगा, लाइफ इज टफ एंड देन यू डाई एंड देन यू आर बोर्न अगेन एंड देन लाइफ इज टफ एंड देन दिस गोज ऑन, ये चलता रहता है। तो हुआ तो येषां पक्षे जनार्दन विजयस्तु पांडुपुत्राणां, पांडुपुत्रों की जय हो, विजय होगी क्योंकि जनार्दन के पक्ष में है। तो उनकी जीत या और भक्तों की भी जीत जो कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में है, मतलब उनकी पुनः पुनः मृत्यु नहीं होगी। तो मृत्यु नहीं होगी तो फिर क्या होगा, मृत्यु नहीं पुनः जन्म नहीं होगा, मुझे कहना था उनकी उनका पुनः जन्म नहीं होगा, पुनः जन्म नहीं होगा तो फिर मरेगा, उसका जन्म ही नहीं हुआ तो फिर मरने का प्रश्न ही नहीं। ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म न विद्यते या त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आएगा। तो ये भी कुछ बातें हमने कह ही दिया आपको। आज के श्लोक में जिसको हम पढ़े थे, ये गीता का जो संदेश है, जो कृष्ण और अर्जुन के मध्य का संवाद है, इसको केवल अर्जुन ही नहीं सुने थे, और कौन सुन रहे थे, और किसने सुना इस संदेश को, वहां एक पेड़ भी था, वहां एक वटवृक्ष भी था जहां कृष्ण और अर्जुन संवाद कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, वहां बगल में एक पेड़ भी था, इसलिए वो पेड़ भी अमर हुआ, वो पेड़ भी अमर हुआ जिसने ये संवाद को सुना, वो पेड़ अब भी वहां उस धाम में इस संवाद का साक्षी है। जब आप जाते हो, गए आप लोग कुरुक्षेत्र? गए नहीं? गए क्यों नहीं गए? लोनावला गए, खंडाला गए, महाबलेश्वर, कोई शिमला भी गया होगा शायद, लेकिन कुरुक्षेत्र कोई नहीं जाता। जाया करो लोग, जाओ, निकल पड़ो। तो कुरुक्षेत्र में जहां वो स्थान आज भी है, वहां जहां कृष्ण और अर्जुन खड़े थे दो सेनाओं के मध्य में, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामे छोटा। अच्युत ने अर्जुन का रथ जहां खड़ा किया, जहां यह संभाषण हुआ, वहां एक पेड़, वो पेड़ आज भी है। उस पेड़ ने सुना, और किसने? घोड़े भी सुने होंगे आपके, घोड़े भी सुन रहे होंगे। उनको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, बात अलग है। और कौन सुन रहे थे? और कौन सुन रहे थे? संजय सुन रहे थे। एग्जैक्टली, वो पास में नहीं थे, दूर थे, दूरदर्शन, नो वायर, नो नथिंग, कोई मशीन, कोई नहीं है। त्वत् प्रसाद, अर्जुन के साथ संजय ने भी सुना था। ये संभव हुआ कैसे? हरे हरे, व्यास प्रसाद आश्रुतवान। इसके पहले के श्लोक में संजय कह रहे हैं, मैं कैसे सुन सका, इतने दूर संवाद चल रहा है, दूसरे शहर में 150-200-250 मील दूरी पर, और मैंने वो संवाद यहां घर बैठे बैठे या राजा के महल में बैठे बैठे सुना, ये कैसे संभव हुआ? व्यास प्रसादात श्रुतवान, मैंने सुना कैसे? व्यास प्रसादात, श्रील व्यास देव का ये प्रसाद, व्यास देव की कृपा से ये संभव हुआ। संजय कहते हैं, ईमानदार है, वेरी ऑनेस्ट। कृतज्ञ भी, कृतज्ञ किए हुए उपकार, याद कर रहे हैं, स्मरण है इनको, क्योंकि व्यासदेव ऐसे धृतराष्ट्र को कहे थे, अगर धृतराष्ट्र तुम जाना चाहते हो युद्ध भूमि में और वहां का दृश्य देखना चाहते हो, जो भी युद्ध देखना चाहते हो, तो मैं वैसी व्यवस्था कर सकता हूं, तुमको उपक्षमता दे सकता हूं ताकि तुम देख सकोगे। फिर व्यासदेव भगवान के साक्षात्कार अवतार है, तो ऐसा वरदान दे सकते थे, देने के लिए तैयार भी थे। लो आंखें, लो मैं चक्षुदान, बिना ऑपरेशन किए ही, जैसे डॉक्टर तो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन यहां मैं तुमको ऐसी आंखें देता हूं, तुम जाओ देखो कुरुक्षेत्र में युद्ध। तो धृतराष्ट्र ने सोचा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने इनकार किया, नहीं नहीं नहीं, जीवन भर तो मैं अंधा रहा और अब आप मुझे आंखें प्रदान कर रहे हो, आंखें मुझे प्राप्त होगी तो मैं जानता हूं। धृतराष्ट्र भी वैसे जानते थे उनके पुत्र बदमाश है, उनका भविष्य धृतराष्ट्र भी जानते ही थे, तो अपने पुत्रों का विनाश, उनका विनाश वो अपने आंखों से नहीं देखना चाह रहे थे। विनाशाय दुष्कृताम, भगवान प्रकट होते हैं दुष्टों का संहार करने और साधुनाम, साधुओं की रक्षा करते हैं। तो धृतराष्ट्र जानते थे पांडु के पुत्र साधु है, सभ्य पुरुष है, सिविलाइज्ड है, और मेरे पुत्र तो दुष्ट है। तो मेरे पुत्रों का विनाश होगा, तो वो दृश्य मैं नहीं देखना चाहूंगा, तो मुझे आके मत दीजिए। तो जब धृतराष्ट्र तैयार नहीं थे, आंख वैसी आंखें प्राप्त नहीं करना चाहते थे, वो दृष्टि नहीं चाहते थे, तब संजय जो वैसे अंधे तो नहीं थे, लेकिन यह अब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में ही रहेंगे और धृतराष्ट्र जी के ये सचिव है संजय, और साथ में रहेंगे। तो फिर उन्होंने व्यासदेव संजय को वो दृष्टि प्रदान किए। वो शक्ति दिए ताकि हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही वे वहीं से देख सकेंगे कुरुक्षेत्र का युद्ध का दृश्य। और केवल देखने की क्षमता नहीं दी उन्होंने, सुनने की भी, वो सुनेंगे भी और देखेंगे भी। और जो जो बातें वैसे देखी भी नहीं जा सकती और सुनाई भी नहीं देगी, मतलब जो मन के विचार है, अब धृतराष्ट्र क्या, आई मीन नॉट धृतराष्ट्र, दुर्योधन का क्या विचार है, अब अर्जुन ने क्या सोचा, ये जो मन में जो विचार कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव और पांडव क्या क्या विचार कर रहे हैं वो भी जान रहे थे। ऐसी जानने की क्षमता भी शक्ति भी श्रील व्यासदेव संजय को दिए। इसीलिए संजय कह रहे, क्या कह रहे, व्यास प्रसादात, ये सारी कृपा रही किसकी कृपा रही, व्यासदेव की कृपा रही। तो श्रील व्यासदेव जिन्होंने भगवद गीता को लिखा, कह सकते रचना की, वे स्वयं तो वहां नहीं थे कुरुक्षेत्र में। कई बार लोग तर्क वितर्क करते, ये कैसे संभव हुआ, जब कृष्ण और अर्जुन बातचीत कर रहे थे, संवाद हो रहा था, वहां तो कोई था नहीं, कोई रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर नहीं था, या वहां कोई सचिव खड़े होकर डिक्टेशन नहीं लिख रहा था क्या क्या कहा जा रहा है, उसी के आधार पर से वो गीता का संवाद लिखा, वहां तो था नहीं कोई। हाँ हाँ, वहां था नहीं कोई, तो भी अगर संजय सुन सकते थे इस संवाद को, तो संजय को शक्ति देने वाले क्या श्रील व्यासदेव उस संवाद को नहीं समझ सकते थे, नहीं सुन सकते थे। तो श्रील व्यासदेव वहां थे नहीं, लेकिन उन्होंने संवाद लिखा कि वे जानते हैं, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है श्रील व्यासदेव। तो ये संवाद जब संजय ने सुना, और अब संवाद अब बंद हुआ है, संवाद का समापन हुआ, इसलिए तभी संजय बोल रहे हैं। जब तक संवाद चल रहा था, जो भी अर्जुन की कही हुई बातें, हाँ, अब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा, संजय बताते थे धृतराष्ट्र को, और उसके उत्तर में श्री भगवान उवाच, भगवान ने ऐसे उत्तर दिया, वहां जो जो कहा जा रहा था उसकी रनिंग कमेंट्री अगर हम कहेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहां जो जो कहा जा रहा था उसको सुना रहे थे संजय। तो संवाद सुनाया और इस संवाद सुनाने के बाद, धृतराष्ट्र को सुनाने के बाद वे कह रहे हैं, राजन हे राजा, संस्मृत्य संस्मृत्य, किसका वो स्मरण कर करके, उस संवाद का स्मरण कर करके, संवादम इमम अद्भुतम, वो अद्भुत संवाद किसकी, किसके मध्य का वह संवाद, केशव अर्जुन यो, केशव और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन के मध्य का वह संवाद, जिस संवाद को पुनः और एक विशेषण के साथ उसका वर्णन कर रहे, पुण्यम, और संवाद का सा पुण्यम, पुण्यवान, मंगलदायक वह संवाद, संस्मृत्य संस्मृत्य, जब मुझे अब स्मरण हो रहा है जो बातें भगवान ने कही, गंभीर मेघ गंभीर या वाचा, भगवान की मेघ जैसी वो गंभीर वाचा वाणी, और अर्जुन के मध्य मध्य में कहे हुए कुछ प्रश्न कुछ विचार, वो जो संवाद संस्मृत्य संस्मृत्य, उसका स्मरण अब भी मुझे हो रहा है। और उसी के साथ ऋष्यामि च मुहुर्मुहु, मैं हर्षित हो रहा हूं, जैसे मुझे वो स्मरण आता है, वो संवाद मुझे हर्ष दे रहा है, मुझे हर्षित कर रहा है, हे राजन, धृतराष्ट्र को राजन कह रहे, धृतराष्ट्र राजा थे, उनको संबोधित करते हुए कहे, मुहुर मुहु, पुनः पुनः मुझे हर्ष हो रहा है, केवल उस संवाद के संस्मरण मात्र से मुझे मैं आह्लादित हो रहा हूं, अत्यधिक हर्ष का अनुभव कर रहा हूं मैं। और ये फिर कोई भी भक्त, यहां तो संजय अपने अनुभव कह रहे हैं गीता के संवाद के संबंध में, उन्होंने संवाद सुना और उसी के कारण ऋष्यामि, उनको हर्ष आनंद का अनुभव वे कर रहे हैं। रसोई घर का ये है, सॉरी, अब भी कोई इस गीता का संवाद को स्मरण कर सकता है तो वो हर्ष का अनुभव करेगा, यानी कि वो यस सदा के लिए ये हर्ष आह्लाद देगा, ये ग्रंथ प्रेरणा देगा, ज्ञान देगा, भक्ति देगा, उसके साथ आनंद भी प्राप्त होगा इस श्रीमद् भागवत के, श्रीमद् भागवत गीता के श्रवण से, अध्ययन से। फिर किसी ने तुरंत स्मरण किया होगा कुछ मिनटों के बाद, या कुछ घंटों के बाद, या कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, या कुछ हरि बोल, ये हर्ष नहीं देगा, कोई संदेश लेके आया, या तो जो भी, या कई युग बीत जाने के उपरांत भी कोई गीता का स्मरण करता है गीता के वचनों का, तब ये ज्ञान गीता का ये उपदेश संवाद व्यक्ति को हर्ष आह्लाद प्रदान करेगा। संस्मृत्य संस्मृत्य, संवादम इमम अद्भुतम केशवर्जनयो पुण्यम ऋष्यामि च पुनः पुनः। अहम हम लोगों के लिए हम सुखी होना चाहते हैं, हर्ष का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये गीता का संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद एक उपाय है। रामबाण, हाँ, रामबाण उपाय। कैसा उपाय? रामबाण। रामबाण क्यों? राम जब भी बाण को चलाते जरूर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता। भगवान का बाण कभी खाली फुकट, खाली फुकट कभी नहीं गया, खाली फुकट का हर बाण लक्ष्य तक पहुंचता। तो ऐसी ये रामबाण औषधि है, रामबाण उपाय है ये भगवत गीता। इस भगवत गीता के श्रवण से, कीर्तन से, कीर्तन से मतलब कहने से, गीता का कीर्तन मतलब कीर्तन कहना, गीता को कहना सुनाना औरों को, श्रवण कीर्तन से स्मरण होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरण, विष्णु का स्मरण होगा। और इसी के साथ हमारी चेतना, चेतना शुद्ध होगी। हमारा हृदय और मन क्या होगा? निर्मल होगा। निर्मल और हृदय भेलोतार, जो क्या करेगा, जो इस कृष्ण अर्जुन के संवाद को जो सुनेगा, जिनके कानों में ये प्रवेश करेगा संवाद, और केवल कानों में प्रवेश करा के नहीं, कहां तक पहुंचाना होगा ये संवाद को? हृदय तक, नहीं तो इकड़ुन तिकड़ुन केले वारे, नली फुंकली सोनारे, इकड़ुन तिकड़ुन गेले वार, जाई वारे कि गेले वारे, गेले वारे, जाई नहीं, जाओ दिया। फिर चेतो दर्पण मार्जनम होगा, चेतना की, चेतना का जो दर्पण है उसका मार्जन, उसकी स्वच्छता होगी, सफाई होगी। और मन जब साफ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चंगा चांगला, मन चंगा पंजाबी, पंजाबी गल हुई। तो फिर तो हम लोग भाग्यवान हैं कि कितने सारे टॉपिक्स है, विषय है हमारे श्रवण के लिए, फिर कीर्तन और स्मरण के लिए, जो भगवान के संबंधित है, भगवान के संबंधित है टॉपिक्स। और वैसे टॉपिक, वैसे विषय ही क्या करते हैं, हमारे चेतना के दर्पण को मार्जन साफ करते हैं, हमारे मन को स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं। जहां भी जाओ, हम वैसे अभी पटना में थे कुछ दिन, तो वहां भी कई, जहां भी जाते हैं हम लोग भारत में, गीता और कृष्ण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके अवतारों के स्थान सर्वत्र पाए जाते हैं भारतवर्ष में। तो पटना गए तो किस, वो तो पाटलिपुत्र, एक समय का पाटलिपुत्र सुना वहां, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज एक समय, चाणक्य पंडित भी वहां रहते थे। वहां से कुछ दूरी पर नालंदा नाम का विद्यापीठ एक समय हुआ करता था। हम वहां थे तो हम लोग गंडकी, वैसे गंगा के तट पर ही है पटना, गंगा के तट पर, गंगा जमुना जहां बहती है, उस देश के हम वासी है। तो वहां तो जमुना नहीं बहती, लेकिन वहां गंडकी, गंडकी नदी का नाम सुने हो आप लोग? गंडकी बड़ी पवित्र नदी, जिस नदी में शालिग्राम शिला है जो मिलती है, शालिग्राम शिला, अलग अलग शिला, जो शिला की अर्चना जो पूजा आराधना होती है, वो सारी शिलाएं इस गंडकी नदी में प्राप्त होती है। गंडकी नदी हिमालय से, तो पटना के पास गंगा और गंडकी का संगम है। तो हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन हम लोग फिर वहां स्नान के लिए भी गए, गंडकी में स्नान किए हम लोग कुछ दिन पहले। फिर वहां भी हम लोग स्मरण कर रहे थे कैसे वो राजा भरत फिर वो हिरण बन गए। पता है ना, आपने सुना है, अगले जीवन में कौन बन गए? हिरण बन गए, क्योंकि उन्होंने अंत में क्या किया? हिरण का स्मरण किया। इसीलिए यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम, जिसका आप स्मरण करोगे अंत में उसके अनुरूप, उस भाव के अनुरूप अगला जन्म। तो उन्होंने हिरण का स्मरण किया तो अगले जीवन में उनको प्राप्त हुआ शरीर, कैसा? हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो हुआ, फिर हम लोग हरिद्वार में, हमारे कुछ भक्त थे, और कुछ बात याद आई, तो वहां समर के वैसे गर्मी के दिन थे और खूब कोका कोला बांट रहे थे, कोका कोला। तो हम लोगों ने, हमारे भक्तों ने पता लगवाई कहा क्या बात हो रही, कोका कोला क्यों? फ्री वितरण चल रहा था। तो जो बांट रहे थे उनसे जो पूछा गया क्यों, क्या हुआ, कोका कोला कोला क्यों बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी की जब मृत्यु हो रही थी तो वैसे थे वे भोला के भक्त थे, तो जब उनकी जान चली जा ही रही थी तो हम पुत्रों ने उनको विशेष निवेदन किया, पिताश्री अब भोला का स्मरण कीजिए। तो पिताजी कहते गए न कोका कोला, उनको कोका कोला के बड़े प्यारे थे, कोका कोला मांग रहे थे। नहीं 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 डैडी प्लीज, अब कुछ ही क्षण बचे हैं आपके आखिरी सांस, कृपया भोला का स्मरण कीजिए, भोला कहिए भोला। उनका बेटा कोका कोला, फिर वन मोर चांस दिया, लेकिन उन्हें सुना नहीं। पुत्रों ने विशेष निवेदन किया तो उन्होंने कोका कोला, तो अंतिम शब्द उनके मुख से निकले। तो पुत्र ने सोचा कि हमारे पिता की अंतिम इच्छा कोका कोला की थी, तो उन्होंने हरिद्वार गए बेटे सब मिलके और कोका कोला का वितरण किया। पता नहीं उन्हें सोचा होगा कोई कोका कोला लोक में, हमारे कोका कोला लोक गए होंगे हमारे पिताश्री। ऐसे और भी कई उदाहरण लगता है, थोड़ा खुशी हंसी मजाक की बात, लेकिन कुछ सीखना भी है, ऐसे उदाहरण फिर याद रहेंगे जीवन भर। तो उन्होंने याद किया हिरण का, याद किया अगले जीवन में हिरण बने। तो कहने का तात्पर्य ये था वैसे कि प्रभु की कृपा से हिरण के जीवन में उनको पूरा स्मरण था कि मैंने कौन सा अपराध किया, मुझसे कौन सी गलती हुई पिछले जन्म में, मैंने घर को त्यागा था, सब कुछ त्याग छोड़ छाड़ के मैं वन में गया, वहां एक हिरण के हिरण से आसक्त हुआ, छोटा हिरण का, उसकी कहानी है क्यों कैसे उसके संपर्क में आए, उसी के साथ रहते थे, उसी को खिलाते पिलाते टहलने के लिए भी जाते, तो उनको सारा स्मरण था कैसे उन्होंने गलती की, कहां त्रुटि रही, कैसे उन्होंने स्मरण नहीं किया अंतिम दिनों में। तो इस हिरण के शरीर में, तो हिरण अब जब बूढ़ा था, बूढ़ा हिरण, और अब कुछ मरने का ही समय आ चुका था। तो ये बूढ़ा हिरण कहा गया गंडकी नदी में प्रवेश किया और उसने दो पैर पानी में रखे, आधा तो पानी में डूब गया और दूसरे आगे के दो पैर उसने कहां रखे, तट पर रखे। जीवन के अंतिम सांस तक उसी स्थिति में ये हिरण रहा। मैं भगवान के संपर्क में रहना चाहता हूं। जो पवित्र नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा है, सिंधु है, ये तो सात नदियां मुख्य ऐसी कई सारे पवित्र नदियां हैं, ये भगवान के चरणों से निकलती है। ये भगवान के चरणों का जल है। भीमानी चंद्रभागा तुझा चरणी चा गंगा, भीमानी चंद्रभागा। तो चंद्रभागा, भीमा, गंगा, जमुना, सरस्वती, गंडकी, ये नदियां क्या है? भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा ये है, या पवित्र नदियां है। तो इस हिरण ने बड़े चालाकी से युक्ति पूर्वक अपने को आधा डुबा के रखा उस गंडकी के जल में, ताकि मैं भगवान के संपर्क में रहूंगा अंतिम सांस तक। तो भगवान का स्मरण करते हुए गंडकी के जल में, और उसे हम लोग जब स्नान के लिए गए थे कुछ दिन पहले, तो इस घटना का भी हम लोग वहां स्मरण कर रहे थे। तो जहां भी हम जाते हैं तो वहीं पर गया भी वहां से दूर नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु भी पटना में भी आए थे ऐसा भी हमने सुना, पटना के पास गंगा के तट पर, और झारखंड जो अभी अलग से राज बन चुका है वहां से चैतन्य महाप्रभु गुजरे। तो हम जहां भी जाते हैं भगवान के स्मरण के लिए कितने सारे स्थान है, विषय है, पवित्र नदियां है, धर्म क्षेत्र है, भगवान के लीलाओं के अवतारों के लीला की स्थलिया है, अवतारों के जन्मों के स्थान है, ऋषि मुनियों के तपोवन है। जहां भी जाते हैं कितने सारे टॉपिक्स है स्मरण के लिए, संस्मृत्य संस्मृत्य। फिर कहीं भी जाइए, भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाइए, वह आपको कई सारे स्थान होंगे। यहां से दूर नहीं है जो पंढरपुर, वहां भी भगवान आए। फिर कभी जाके आना चाहिए हम लोगों को, आप लोगों को। और कहां भगवान आए थे? कृष्ण भगवान बलराम के साथ कुंडीनपुर आए थे। कुंडीनपुर है कहां, क्या है कुंडीनपुर? कौंडिन्यपुर अब कहते हैं उस स्थान को। ये रुक्मिणी का जन्म स्थान है, रुक्मिणी का जन्म स्थान अमरावती जिला, अमरावती, अमरावती से 40 किलोमीटर दूर कौंडिन्यपुर, वहां भगवान कृष्ण और बलराम आए, रुक्मिणी हरण हुआ। वहीं से दूर नागपुर से कुछ दूरी पर रामटेक है, रामटेक, वहां राम आए थे। वहां राम ने क्या किया? रामटेक मतलब राम ने वहां ली प्रतिज्ञा की, राम ने इस पृथ्वी पर जितने भी असुर है उनका संहार करूंगा। राम ने अपने हाथ में धनुष और बाण लिया और संकल्प किया, राम का संकल्प, रामटेक। वह अगस्त मुनि के आश्रम पर भी गए, अगस्त मुनि, जहां हमने शिला पर लिखा हुआ लेख पढ़ा तो वहां लिखा था राम वहां आए थे 8,86,000 वर्ष पूर्व, मतलब लगभग 9,00,000 वर्ष पूर्व वहां राम आए थे, रामटेक। वहीं से आगे प्रभु आए, नासिक आए, पंचवटी आए। तो कृष्ण के स्थान है, राम की स्थलिया है। चैतन्य महाप्रभु आए महाराष्ट्र में, हम लोग महाराष्ट्र के थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। जिस राष्ट्र के हम वासी, आप लोग वासी हो। चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र में आए, कहां कहां आए? कोल्हापुर में आए थे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने महालक्ष्मी का दर्शन किया या महालक्ष्मी को दर्शन दिया। वहां से पंढरपुर गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लगभग 2 सप्ताह रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में। चंद्रभागा में स्नान किया करते थे, नृत्य करते हुए विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाया करते थे। और इसके साथ ही साथ उन्हें 7 दिवस 7 रात्रि चैतन्य महाप्रभु और एक भक्त के साथ, श्री रंगपुरी नाम के भक्त के साथ ऐसे बैठे रहे और वार्तालाप कर रहे थे, कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन कर रहे थे। इस कथा कीर्तन में ही उन्होंने अधिक समय बिताया पंढरपुर में। फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु आए सातारा के पास, कृष्ण वेन्ना संगम, वहां पर उनको कृष्ण कर्णामृत नाम का ग्रंथ प्राप्त हुआ। कृष्ण कर्णामृत चैतन्य महाप्रभु बहुत पसंद आया ग्रंथ, और ये ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में आदि केशव नाम का स्थान है कन्याकुमारी से कुछ ही दूरी पर, वहां उनको प्राप्त हुआ था ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ। तो वहां से ब्रह्म संहिता लिए, महाराष्ट्र से कृष्ण कर्णामृत लिए, और धीरे धीरे भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर लौटे थे। तो महाराष्ट्र में कितने सारे स्थान है, ये तो भगवान श्री कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु के स्थान हुए। फिर बगल में है तुकाराम का देहू है, वहां वहीं पर वैकुंठ गमन स्थली है, जहां से वैकुंठ के लिए तुकाराम महाराज प्रस्थान किए, जहां पर वे कहे अमी जातो राम राम मंडलिनो, राम 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 राम। तो वहां कोई जाता है तो कांपने लगता है, कंपन होता है, कुछ वांछा कुछ इच्छा जगती है, क्या हम भी जा सकते हैं? तुकाराम तो गए, तो क्या हमारा भी नंबर कभी लग सकता है? सब विचार आ सकते हैं अगर वहां कोई जाएगा तो। और कृष्णा नदी और तो कई नदियां, कई और भी स्थान, कई संतों के स्थलियां भी महाराष्ट्र भर में है। तो इनके स्मरण करने से संस्मृत्य भगवद गीता के साथ और भी इन कई सारे भगवान के संबंधित जो स्थान है, नदियां है या महापुरुष जो हुए, संत महात्मा हुए, उनके भी स्मरण से ऋष्यामी च पुनः पुनः हर्ष और आह्लाद आनंद का हम लोग अनुभव कर सकते हैं। केवल हमें हमारे चिंतन का, वार्तालाप का विषय को बदलना है। विषय अगर भगवान है, इसका परिणाम है ऋष्यामी, आनंद है। लेकिन विषय अगर विषय वासना है, ध्यायतो विषयान पुंसाम, ध्यान अगर विषयों का है तो हुआ। और किसी ने, हम लोग, मैं बंबई में था तो किसी ने, एक जवान ने अपना सीना फाड़ के दिखाया, हम देख रहे थे, ये वैसे व्यक्ति का चित्र था, फोटोग्राफ, बिलबोर्ड था, साइन बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट थी। तो हमने थोड़ा ध्यान से देखा उसके दिल में क्या है, तो उसके दिल में कोका कोला, अगेन कोका कोला। तो जो अंदर है उसी का ध्यान, हनुमान जी ने फाड़ के दिखाया तो वहां क्या था, सीताराम। तो ध्यान करते सीताराम का तो फिर मन में कौन बैठता है, दिल में
वही बैठते हैं, तो जिसका हम ध्यान करेंगे वही दिल में जाके बैठते हैं और वहां परेशान करते हैं। कुछ लोग परेशान करते हैं, हमारे दुख का कारण, अशांति का कारण बनते हैं, तो कुछ शांताकारम भुजग शयनम, शांताकार के जो भगवान है उनका स्मरण करेंगे तो हम भी शांति और सुख का अनुभव करते हैं। तो चॉइस हम लोगों की है, केवल विषय को, सब्जेक्ट मैटर को चेंज करना है। ध्यान करना तो बंद हो ही नहीं सकता, हम तो ध्यान करते रहेंगे, चिंतन मनन चलता रहेगा। केवल सांसारिक विषयों के स्थान पर हमें भगवान के विषय, भगवान के संबंधित जो विषय है उनका ध्यान करना है। तो जैसे भी हम लोग सत्संग में आएंगे, जैसे आज आप हर रविवार को आते हो और भी आप आते रहते हो, इससे ये जो विचार का, ध्यान का जो विषय है इसमें परिवर्तन होगा। आपको नया विषय, शाश्वत विषय, वैसे कोई नया तो नहीं है, भगवान नए नहीं है, गीता नई नहीं है, राम नए नहीं है, बाकी लोग वैसे नए हैं, ये तो शाश्वत है, बाकी तो क्षणभंगुर है। उसको हम लोग ध्यान करते हैं जो शाश्वत है, भगवान अनादिर आदिर गोविंद, जो आदि पुरुष है, उनका ध्यान करने से ऋष्यामि च पुनः 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 हर्ष और आनंद का अनुभव, और ऐसा अनुभव करने का अधिकार हर जीवात्मा को है, हर मनुष्य को है। ऐसी व्यवस्था प्रभु ने की है और उसी को भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके इसी व्यवस्था करके गए हैं, ताकि इस संघ में लोगों को संग मिलेगा, कृष्ण का संग, सत्संग प्राप्त होगा, जहां ये भगवान के विषयों का स्मरण कर सकते हैं। और केवल 41 वर्षों में ही प्रभुपाद अमेरिका गए, 40 वर्ष पूर्व गए, और फिर हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना तो वैसे न्यूयॉर्क में हुई, आप शायद सुने पढ़े होंगे, वो भी अगले साल 40 वर्ष होंगे, हरे कृष्ण आंदोलन 40 वर्ष का जवान या बूढ़ा होगा नेक्स्ट ईयर। इस साल तो प्रभुपाद गए केवल अमेरिका, और इतने कम सालों में, अब हम जब मायापुर गए थे तो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जानकारी जो है, केवल 40 वर्षों में ही हरे कृष्ण आंदोलन संसार के 160 देशों में कार्यरत है, 160 कंट्रीज भर में। और ये तो एक जगह सत्संग हो रहा, इस प्रकार कई स्थानों पर सत्संग हो रहे हैं जहां कृष्ण विषय है। भगवद गीता तो अब लोग भगवद गीता पढ़ना भी चाहेंगे, इसको अपना विषय, अपने चिंतन का विषय बनाना भी चाहते, अगर होते तो कैसे संभव होता, चाइनीज लोग कैसे पढ़ते, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब लेटेस्ट ये भी इंफॉर्मेशन है कि लगभग 100 भाषाओं में, संसार की मुख्य 100 भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद हो चुका है, ताकि स्वाहिली नाम की भाषा जो अफ्रीका में बोली जाती है, स्वाहिली और हिब्रू, शायद आप नाम भी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है, हिब्रू और जेकोस्लोवेकियन और चाइनीज और डच और फ्रेंच और स्पेनिश और कई सारी भाषाओं में जैसा अनुवाद हो रहा है, तो उस भाषा के लोग हमारे ही भाई बहने अब गीता को पढ़ पा रहे हैं। ये सारा कार्य केवल 40 वर्षों का ही है, तो ये आपका आंदोलन है, आपके श्रील प्रभुपाद का स्थापित चैतन्य महाप्रभु के ने प्रेरित किया हुआ यह आंदोलन। आइए इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यथा संभव, यथा शक्ति, यथा मति, ताकि अधिक अधिक लोगों के चिंतन का विषय गीता, भागवत, कृष्ण, राम, चैतन्य, गंगा, जमुना या इस प्रकार संत महात्माओं के जीवनी, जीवन चरित्र, उनके आदर्श रहेंगे ये विषय। तो इसी के साथ फिर शुद्ध होगा हमारा मन और फिर वो मन हमको परेशान नहीं करेगा। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।